देख संगम का आनंद, हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद, हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता, हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता, तरसते नन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है, हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है, ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।
ओम शांति। आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी, एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आप यूपी की धरनी में कानपुर के पास स्थित एक छोटे से गांव से निकले बाबा के अनमोल रतन हैं। आपका यह सौभाग्य रहा कि बाल्यकाल में ही आपके घर में गीता पाठशाला खुल जाने के कारण पूरा ही बाल्यकाल आध्यात्मिक वातावरण में पला, तो लौकिक और अलौकिक दोनों ही पढ़ाई पढ़ते हुए आप बड़े हुए और 71 में पहली बार मधुबन धरनी में अपना कदम रखा, उसकी अमीर छाप अपने दिलो दिमाग में लेकर आप वापस लौटे अपने गांव और अगले वर्ष परमिशन लेटर लेकर आप पुनः पहुंच के 72 में, और तब से ही इस धरनी पर रहकर आप अपनी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आरंभ में विविध सेवाओं में आपका योगदान रहा और उसके बाद 1976 में आपके कंधों पर एक विशेष सेवा की जिम्मेवारी आई। गेस कर सकते हैं आप सभी, हाँ, कि जिस सेवा के कारण ही आप पूरे यज्ञ में, पूरे ब्राह्मण परिवार में किस नाम से प्रसिद्धि पाई है आपने, मुरली वाले राजू भाई। कि जो मुरलियां सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में करना और फिर सभी सेवा केंद्रों को पोस्ट करना। और ये सेवा आज दिन तक आप बखूबी निभा रहे हैं और उसके साथ साथ आज हम देखते हैं कि बाबा की अव्यक्त जो मुरलियां हैं उनसे भी विशेष प्रकार के संकलन तैयार कर आप छोटी छोटी पुस्तिकाएं बनाते हैं। हमारे सीनियर्स जो है मम्मा दादी बाबा आदि आदि उनकी भी छोटी छोटी पुस्तिकाएं आप तैयार करके ब्राह्मण परिवार को देते हैं, जिससे हम सब के लिए पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ के लिए पॉइंट्स ढूंढना सहज हो जाता है। यहाँ तक कि पत्र पुष्प भी जो सेवा केंद्रों पर भेजा जाता है वो भी आप ही तैयार करते हैं। यहाँ तक कि मुरली के अंदर जो प्रश्न उत्तर होता है, वरदान होता है, स्लोगन होता है, ये सब आप तैयार करके उसमें डालते हैं। और वर्तमान में तो चूंकि आपका सारा ही समय मुरलियों के साथ, मुरली ही आपका सब कुछ है, आपकी उंगलियां सदैव टाइपराइटर पर कहो, कीबोर्ड पर कहो, हाँ, नृत्य करती रहती है और साथ साथ वो मुरली के पॉइंट मन मस्तिष्क में नृत्य करते रहते हैं। और यही कारण है कि अमूल्य रतन नाम से जो टॉक शो आपने शुरू किया अव्यक्त मुरलियों पर, हाँ, जिसके 1300 एपिसोड आप पार कर चुके हैं और आप सभी अवश्य उसका लाभ लेते होंगे। इसके साथ साथ आप हमारा जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके वाइस चेयरपर्सन हैं और इस प्रभाग के द्वारा शाश्वत यौगिक खेती की नई अवधारणा आपने पूरे किसान जगत को दी है, जिससे बहुत बड़ी क्रांति हुई है। इतना ही नहीं, मधुबन के अंदर हिंदी टाइपिंग, फोटो कॉपी, स्टेशनरी आदि आदि का डिपार्टमेंट भी आप ही देखते हैं और साथ साथ दादियों के पास जो पत्र आते हैं उनके जवाब देने की भी जिम्मेवारी आपकी ही होती है। और इतना ही नहीं, चूंकि बुद्धि में सारा ही समय ज्ञान के रतन घूमते रहते हैं, बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान भी दिया है और इसलिए पूरे भारत भर में तो क्या, विश्व भर में आपका भ्रमण चलता रहता है और जाकर के सब जगह भट्टियां करा के सभी ब्राह्मणों को भरपूर करते हैं। आज हमारे बीच में बहुत सुंदर विषय को लेकर संगम युग उत्सव का युग, हाँ, आज की मुरली में बाबा ने रक्षाबंधन का उत्सव भी याद दिला दिया, होली धुरिया भी याद दिला दिया, दीपमाला भी याद दिला दी। तो इन सब की क्या गहराई है, कैसे संगम युग उत्सव का युग हमें उत्साह दिलाता है, इन सब पर प्रकाश डालेंगे। तो सुनते हैं भ्राता जी से, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। सभी ने 3 दिन का उत्सव तो मना लिया। भारत का हर दिन उत्सव है। जितने उत्सव भारत में मनाए जाते हैं दूसरे देशों में इतने उत्सव नहीं मनाए जाते। और उत्सव मनाने के पीछे एक भावना ये रहती है कि हर समय उत्साह बना रहे, उमंग बना रहे। तो बाबा ने आज विशेष संगम युग की सेंचुरी याद किया। पूरा संगम युग 100 साल का ये सेंचुरी युग है और इस युग में आप सभी बच्चे सदा ही उत्सव मनाते हो, चाहे शिव जयंती मनाई, फिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दीपावली, एक के बाद एक त्योहार आते हैं, उनके आध्यात्मिक अर्थ को हम सब जानते हैं। आज नया अर्थ होली और धुरिया का बताया, ध्यान गया? होली तो पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन धुरिया ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान का रंग, ज्ञान की धूल एक दूसरे को हम लगाते हैं। तो बाबा तो अपने बच्चों को नए नए ढंग से उमंग उत्साह दिलाते रहते हैं, और ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। उमंग उत्साह पंख हैं, इसलिए रोज ही नए ढंग से जब उमंग उत्साह में हम रहते हैं तो बहुत नए नए प्लान्स अंदर अंदर आते हैं। आप सभी ने हमारी दादियों के अनुभव सुने हैं, और विशेष करके हमारी दादी प्रकाशमणि जी, जिनको रोज नया उमंग उत्साह आता था। रोज, कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन उनको नया उमंग ना आए, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उसके आधार से ही मैं समझता हूँ इतना बड़ा सेवाओं का विस्तार हुआ। अव्यक्त होने के 2-3 साल पहले से अचानक उनको उमंग आया कि हमारे भारत भूमि पर हर स्टेट के हेडक्वार्टर को, राजधानी को 1-1 लाख लोगों को इकट्ठा करके बड़े प्रोग्राम करना चाहिए। बहुत कुछ हम लोगों की मीटिंग में हुआ कि दादी 1 लाख लोगों को इकट्ठा करना कोई सहज बात है क्या? कोई एक्टर आते हैं, कोई ऐसे नामी ग्रामी लोग आते हैं, उनको देखने के लिए लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम में 1 लाख लोग कैसे आएंगे? लेकिन दादी जी का जो उमंग उत्साह था, कट नहीं करो आप लोग, दादी को आता है 1 लाख की सभा होनी चाहिए, 1 लाख की सभा होनी चाहिए। आखिर हमारे गुजरात में सहला दीदी थी, उनको आया, दादी की बहुत, उनकी हर बात को बहुत जल्दी स्वीकार कर, जी दादी का अच्छा कोई नहीं करेगा, सहला तुम करेगी ऐसे ही, और सहला दीदी जी दादी मैं करूंगी, और उन्होंने इतनी तैयारियां की, इतनी उमंग उत्साह से सबको तैयार किया, क्योंकि बाहर का कोई स्पीकर नहीं होगा उस सभा में, त्रिमूर्ति दादियां ही होंगी, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, दादी जानकी, तीन ही दादियां, और ये तीनों दादियों का भाषण होगा और कुछ नहीं होगा, न नाच न गाना न गीत कविता, और उसमें 1 लाख लोगों को इकट्ठा करना है। लेकिन कमाल बाबा की, कमाल हमारे दादी जी के उमंग उत्साह की, जो 1 लाख की बजाय 2 लाख से भी अधिक लोग इकट्ठे हो गए, और वो सफलता देखने से उनका जो उमंग बढ़ा, मुझे याद आता है रोज नया नया, आज इस स्टेट में करना, आज इस स्टेट में करना, आज इस स्टेट में करना। उन्होंने भारत का कोई भी कोना नहीं छोड़ा। मैं समझता हूँ आप सबने देखा सुना होगा कि 2005-6-7 में पूरे भारत के अंदर जितने बड़ी सिटी हैं सब में मेगा प्रोग्राम के नाम से 1-1 लाख लोगों के संगठन हो गए। इतनी सेवाएं हुई, इतनी धूम मच गई, और दादी जी का उमंग तो आसमान पर था। इतनी खुशी होती थी जब बैठता था मैं जा करके, क्योंकि हमारा पत्र व्यवहार का ही काम होता था लिखने का, बस ऐसे कहती दादी राजू आज इस जोन ने अभी तक कुछ नहीं किया है, इस सेंटर ने अभी तक कुछ नहीं किया, उसके बैंक में पैसा है, क्या करेगी, तुम उसको फोन करो, मेरे सामने करो कि दादी का विचार ये है, ऐसे कहे दादी का विचार ये है। और जब मैं फोन लगाता दादी का विचार है आपके स्टेट में मेगा प्रोग्राम होना चाहिए, हमारे पास कौन है, कैसे करेगा, अगर जरा भी उसने इधर उधर की बात की तो दादी मेरे फोन दे दो अभी। और उसको इतना उमंग दिला देना, इतना उत्साह दिला देना, तो मैं समझता हूँ कोई स्टेट नहीं छूटी, बड़े सिटी भी नहीं छूटी, स्टेट तो छोड़ो। और जब सब प्रोग्राम पूरे हो गए तो लास्ट में कहती, मधुबन वालों ने तो कुछ नहीं किया। मधुबन वाले कम से कम शांतिवन को इतना बड़ा हाल बना, इसको छोटा कर दो, 50,000 लोग तो बुलाओ। मधुबन वाले 50,000 लोग किसको बुलाएं, कहां से आएंगे? अरे इतने गांव हैं छोटे छोटे, भील हैं, आदिवासी हैं, सबको बुलाओ। दादी बुलाती है, दादी उनको ब्रह्मा भोजन खिलाएगी, दादी उनको सौगात देगी, सब आने चाहिए। इतना उमंग से सब मधुबन निवासियों को खड़ा कर दिया, सबने गाड़ियां उठाई, इधर उधर निमंत्रण दे दे करके, और उस उमंग उत्साह से सचमुच 45,000-46,000 लोग इकट्ठे हो गए। पूरा शांतिवन आदिवासियों से, ग्रासियों से, सब बाबू के जितने आजू बाजू सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पूरे इकट्ठे हो गए। दादी बुलाती है, और उसमें दादी जी ने जो भाषण किया जा करके, अरे इनको ये खिलाओ, इनको ये सौगात दो, इनको ये सौगात दो, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं। दादी ने सबको सौगात दिया, सबको खिलाया भोजन, ब्रह्मा भोजन। तो उमंग उत्साह क्या होता है, ये जितने कार्यक्रम हुए हैं, जितना विस्तार देख रहे हो मधुबन का, ये सब हमारी दादियों का उमंग उत्साह। कभी ये नहीं सोचा पैसा कहाँ से आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, नहीं नहीं, बाबा कहता बच्चे करो। रोज जाती थी बाबा के कमरे में और सामने बाहर निकलती थी, कहती थी आज मुझे बाबा ने ये टच किया, आज मुझे ये टच किया, आज मुझे ये कहा। तो हम लोग कहते, दादी कैसे कहता, आप ट्रांस में जाती हो क्या? नहीं नहीं, ट्रांस में नहीं जाती हूँ, लेकिन बाबा मेरे सामने आता है, बाबा कहता बच्ची ये सेवा अभी रह गई है, ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है। तो उमंग उत्साह का आधार क्या हुआ, रोज नए नए प्लान, नए नए विचार, नया उमंग, नया उत्साह, नवीनता और वैरायटी। आज ब्राह्मण आत्माएं कभी योग में थक जाती हैं, कभी सेवाओं में थक जाती हैं, कभी इस ब्राह्मण जीवन की धारणाओं से थक जाती। थकने का कारण नवीनता की कमी है। अगर नए नए ढंग से कोई उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करे, नया नया ढंग, अब एक जैसा आपको कहा जाए, ये कमेंट्री रोज हमारी दीदी सुनाए, आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम की निवासी है, उसका स्वधर्म शांत है, और आप 10-15 दिन यही कमेंट्री लेकर के योग करो, क्या होगा? क्या यही सोचना है, क्या यही योग है? बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे। अगर सचमुच कोई नए नए ढंग से कोई अच्छी अच्छी कमेंट्री रोज सुनाए, रोज नए नए ढंग से बाबा को प्यार करे, पत्र लिखे। बाबा कई बार कहते हैं मेरे बच्चे जो है ना नेमीनाथ बन गए हैं, नेमीनाथ। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में जाएंगे ना, तो वहाँ एक नेमीनाथ की मूर्ति है, उसके लिखे नीचे लिखा है नेमीनाथ। नेम को पालन करते हैं, सवेरे आएंगे, क्लास में बैठेंगे, कई तो सबसे आगे आगे आके बैठेंगे, ऐसे लगता है नंबर 1 स्टूडेंट है, लेकिन कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं। रोज की मुरली सुनेंगे, घर में जाएंगे, वहां की वहां वैसे के वैसे। अरे बाबा रोज नया उमंग उत्साह, नया डोज दे रहा है, तो कितने उमंग से आज ये करना है, आज ये करना है, आज ऐसे करना है। तो पुरुषार्थ में अगर नवीनता है, पुरुषार्थ में अगर वैरायटी है, तो कभी भी बोर नहीं होंगे, उमंग उत्साह और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो 3 दिन में एक जैसा योग तो नहीं किया ना, एक जैसी भट्टी तो नहीं की ना, रोज नया नया। कभी प्रेम स्वरूप की स्थिति है, कभी आनंद स्वरूप की स्थिति है, कभी सुख स्वरूप की स्थिति है, कभी एकदम शक्ति स्वरूप, ज्वाला स्वरूप की स्थिति है। कितनी वैरायटी पॉइंट्स योग के लिए बाबा ने सुनाई है, सिखाई। अमृत वेले उठो, आज प्यार के सागर की, प्यार की लहरों में लहराएंगे, आज सुख के सागर की लहरों में लहराएंगे, आज ज्ञान की लहरों में लहराएंगे, कितनी सागर की लहरें हैं, एक जैसी लहर नहीं है, कभी बहुत जोर से लहर आती है, कभी थोड़ी धीरे से आती है, कभी इधर से आ जाती है, कभी इधर से आ जाती है। ब्रह्मा बाबा की मुरलियों में कितनी लहरें हैं, सागर की लहरें, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लहर के ऊपर लहर, लहर के ऊपर लहर। तो सागर के समान जो उछलना जानते हैं, सागर के समान जो उमंग उत्साह में रहते हैं, बाबा कहते हैं वो कभी भी पुरुषार्थी नहीं बनते। तो संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, हर घड़ी उत्साह है, मनाते चलो, खूब मौज की स्थिति का अनुभव करते चलो, कभी भी थकावट का अनुभव ना हो। नहीं तो ये जो निजी धारणाएं हैं ब्राह्मण जीवन की, कई लोग इसमें भी थक जाते हैं। यही हमें जीवन ऐसा ही भोजन करना है, कोई पार्टी में नहीं जाना है, कोई शादी ब्याह में नहीं जाना है, कोई कपड़े भी वही सफेद रोज पहनने। लोग कभी कभी सोच सोच करके बोर हो जाते हैं। और बाबा ने हम सबके लिए जो नियम मर्यादाएं कायदे बनाए हैं, अगर ब्राह्मण आत्माएं उसको सही रूप से दृढ़ता के साथ पालन करती हैं तो रोज नए उमंग उत्साह से आगे बढ़ती जाती है। यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे। अगर मान लो आज एक निजी धारणा पर आपका पूरा ध्यान है, बाबा हम सबको एक बात कहते हैं, मैं चार पांच बातें आपके सामने रखता हूं जिससे उमंग उत्साह सदा कायम रह सकता है। हर दिन उत्सव लगेगा कि आज का दिन उत्सव है, उत्साह है। उसके लिए सबसे पहली बात है, हरेक को रोज कोई न कोई नया सामान लेना है, नया सामान। और बाबा ने हम सबको सामानों की माला पहनाई है, बहुत बड़ी। बाबा कहते हैं जितने मेरे टाइटल्स हैं उतने आप बच्चों के समान हैं। और बाबा के टाइटल कितने हैं? आज हजारों मंदिर बने हुए हैं। एक मंदिर जहां से मैंने भट्टी कराना शुरू किया, गुजरात में एक मंदिर है भरूच में, नीलकंठ का, नीलकंठ महादेव। पहले पहले मुझे वहां की बहनों ने कहा कि आप भट्टी कराने आओ, दीदी ने कहा वहाँ टीचर्स की भट्टी है, राजू अभी वहाँ टीचर्स की भट्टी क्या कराएगा। कहा नहीं, टीचर्स की भट्टी तो अलग चलेगी, हमारे भाई बहनों की भट्टी वो कराएगा। तो मैं पहले पहली बार उस मंदिर में भट्टी कराई। वहाँ सेंटर बड़ा नहीं था, अंदर सिटी में सेंटर था, और मंदिर के अंदर भी जानते हो घंटे घड़ियाल बहुत सारा पूजा पाठ होता है। फिर भी उन्होंने एक स्थान दे दिया कि आप यहां पर रहो, यहां पर भट्टी करो, योग करो, तपस्या करो। तो जब मुझे मंदिर दिखाया तो वहां जो छोटे छोटे शिवलिंग थे ना, उस हर शिवलिंग पर शिव बाबा का अलग टाइटल था। इतने नाम थे, मैं समझता हूं हजारों नाम शिव बाबा के उस मंदिर में मैंने देखे। और बाबा कहता है बच्चे जो भी कर्तव्य मैंने संगम पर किए हैं उन सब कर्तव्यों के आधार से मुझे वो टाइटल मिला है, और जो टाइटल मेरा है तुम मेरे सहयोगी बच्चों का वो सम्मान है। उस सम्मान को लेकर के बहुत ऊंचे नशे और खुशी में रहो, उमंग उत्साह कभी कम नहीं होगा। संगम युग पर भगवान ने हमें चुना है, उसकी हमारे ऊपर दृष्टि पड़ी है, उसने कहा है मेरे बच्चे मेरे राइट हैंड है, मेरी भुजाएं हैं, ये मेरे बच्चे विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व परिवर्तक हैं, ये पूरे वृक्ष के पूर्वज हैं, ये पूज्य हैं, ये महान आत्माएं देव आत्माएं हैं, साधारण नहीं है। कभी कभी इस ब्राह्मण जीवन की जो महानताएं हैं, विशेषताएं हैं, अगर हम उनको भूलते हैं, विस्मृति होती है, तो वो उमंग उत्साह नहीं रहता। इसलिए जितनी बाबा ने हम बच्चों की महानताएं सुनाई हैं, जो हमें टाइटल्स दिए हैं, रोज नए नए टाइटल के आधार से पुरुषार्थ करो। अगर योग में मेहनत लगती है तो 5 सामान मैं आपको बता देता हूं, बहुत सहज हैं। और वो सामान सवेरे ले लो, सबसे पहले मैं आत्मा मस्तक मणि हूं। मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि हूं। कभी बाबा के मस्तक के बीच में पहुंच जाओ, कभी बाबा को अपने मस्तक पर बिठा लो। मस्तक मणि समझते ही ये देह भान समाप्त हो जाएगा। आज मान लो सांप के पास मणि, मणि जो होती ना, कोई कोई सांप जो होते हैं ना मणिधर होते हैं, मणि को साथ रखते हैं। और कभी कभी कोई कोई ने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, कहते वो सांप जब निकलते हैं तो मणि को ऐसे रख देते हैं बाहर निकाल के, उनके पास मणि होती है और उसके चारों ओर पहरा देते हैं, घूमते रहते हैं, मणि में रोशनी होती है। बाबा ने हम सबको चैतन्य मणि बनाया है। मस्तक के बीच में एक चैतन्य मणि रहती है और मणि देखने और मणि के सामान में रहने से क्या फायदा हुआ, देहवान समाप्त हो गया। कोई सांप को नहीं देखता, मणि को देखता है। ये शरीर सांप है, अगर इस पर ध्यान जाता है, इसके रूप रंग पर ध्यान जाता है, इसकी बातों पर ध्यान जाता है तो देहमान कई विकल्पों की उत्पत्ति करता है। जितने माया के वार होते हैं, व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते हैं, उन सब का कारण है मस्तक मणि पर ध्यान न होना और देह भान पर ध्यान जाना। तो अभ्यास करना, मैं आत्मा मस्तक मणि हूं। आंख खुलते ही भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, ऐसे अनुभव करो ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। इतना अच्छा योग लगेगा जो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। बाबा कई बार कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा की याद तो अपने आप आती है। देहभान से देह के पिता, देह के संबंधी याद रहते और आत्म अभिमानी स्थिति से बाबा की याद नेचुरल रहती है। दूसरा सम्मान, बाबा के नैनों का मैं नूर हूं। कहते हैं नूर नहीं तो जहान नहीं, मैं नूरे रत्न हूं। बाबा ने मुझे अपनी नैनों में बिठाया है, नैनों में बसाया है, इन दोनों नैनों में बाबा को बिठा लूं, कभी भी नजर नहीं लगेगी, कभी भी नजर चंचल नहीं होगी। वृत्तियों में दृष्टि का बहुत बड़ा योगदान है। जो कुछ देखता है व्यक्ति वैसे ही संकल्प चलते हैं और वो संकल्प अगर कई बार रिपीट हो जाते हैं तो वृत्तियां बन जाती हैं, एटीट्यूड बन जाता है, दृष्टिकोण बन जाता है। इसलिए हम सब ध्यान दें, इस सम्मान को बार बार स्मृति में रखें, मैं तो बाबा के नैनों की नूर हूं। ये जहान कैसे देखेंगे, मैं एक अनुभव सुनाता हूं। इस बारी जब मैं विदेश यात्रा पर था, एक 35 दिन, एक मास, तो मैंने कहा बाबा आप मुझे अमेरिका घुमा रहे हो या मैं आपको घुमाने आया हूं। ऐसे पूरा टाइम ऐसे लगता था जैसे बाबा मेरे मस्तक पर विराजमान है, मेरे नैनों में है। जो भी देखे उसको ये अनुभव हो कि ये नहीं है, बाबा है। इतना ऊंचा सम्मान था कि मैं नैनों का नूर हूं। और नजर से निहाल भगवान ने हमें किया है, मैं अपनी नजर से निहाल करने आया हूं। बहुत अच्छी बाबा ने सेवाएं कराई। हम सभी भी जहां भी रहें, जिधर भी जाएं, जो भी सेवा करें, अपने नैनों में बाबा को बसा के जाओ। ऐसे दृष्टि दे दो जो निहाल हो जाए, उसका जीवन बदल जाए, वो भगवान को पहचान जाए, उसको लगे साधारण नहीं है, यह अलौकिक शक्ति है। बाबा की याद भी स्थायी रहेगी और साथ साथ जो आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी उनको भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो दूसरा सम्मान है, मैं नैनों का नूर हूं। तीसरा, बाबा मैं आपके दिल का मालिक, दिल तख्त नशीन हूं। हैं सभी दिल तख्त पर रहते हो, जो बहुत सच्चे होते हैं, सपूत होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, बहुत स्नेही होते हैं। माँ बाप कहते हैं तो मेरे दिल में रहता है, हम सब दिलाराम के दिल में रहने वाली दिलरुबा हैं। दिलवर को हमने पसंद किया है, उसने हमें पसंद किया है। ऐसे दिल तख्त के मालिक बन करके रहो, और दिल तख्त का मालिक वही रहता है जो अकाल तख्त पर रहता है। इस अकाल तख्त पर विराजमान मैं आत्मा भगवान के दिल तख्त का मालिक हूं। जरा भी अगर अकाल तख्त छूटता है तो दिल तख्त भी छूट जाता है, क्योंकि पहली आज्ञा है देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो। जिस बच्चे ने इस आज्ञा का पालन किया है वही दिल तख्त नसीन बन जाता है। कितना पालन किया वो नंबर वार है। ऐसे नहीं हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, हमने मकान बना के दे दिया, हमने सेंटर बनाया, हमने ये कर दिया, हमने ये किया। कई लोग अपना धन लगाते हैं, तन भी लगाते हैं, लेकिन दिल लग जाए उसमें कि ये मुझे अपने दिलवाला को पसंद करना है, उसकी संपूर्ण मुख्य आज्ञा का पालन करना है। तो पहली आज्ञा है देही अभिमानी बनो, पहली आज्ञा है देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। और इस पहली आज्ञा को जिसने पालन किया वो तो बाबा के दिल तख्त का मालिक बन जाता है। इस समय हम दिल तख्त पर राज्य करते हैं और भविष्य में विश्व राज्य मिलता है, विश्व राज्य का तख्त मिल जाता है। तो ये तीसरा सम्मान है। और चौथा सम्मान है बाबा मैं आपकी राइट हैंड भुजा हूं, आ जाओ भुजाओं में है, लेफ्ट की भी जरूरत, एक भुजा अच्छी नहीं लगेगी, चाहिए तो दोनों ही, दोनों का अपना महत्व तो है। लेकिन हर श्रेष्ठ कार्य में पूजा का कार्य है, दान का कार्य है, भोजन का कार्य है, हमेशा राइट हैंड आगे किया जाता है। कोई इस हाथ से टोली ले, इस हाथ से टोली दे, कैसा लगता है, इसको पता नहीं है कैसे देना चाहिए। हम सब बाबा की राइट हैंड भुजाएं हैं। जो श्रेष्ठ कार्य है संगम पर भगवान को कराना है, मैं उसके लिए सदा हाजिर हूं। हाँ जी, बाबा कहे बच्चे ये करना है, जी बाबा, कभी भी उसमें प्रश्न न उठे ये क्यों होगा, ये कैसे होगा, ये तो बड़ी बात है। हमारी मम्मा ने, हमारी दादियों ने बाबा की किसी भी बात में ये प्रश्न नहीं उठाया, ये कैसे होगा। असंभव बात भी जो बाबा ने अगर कह दी है संभव हो जाएगी। आप समझते हो जब विश्व की विदेश की सेवाएं शुरू हुई, दादियों के अंदर एक बात रहती थी कि मुझे भाषा नहीं आती, भाषा नहीं आती, और विश्व की सेवा के लिए विदेश में जाना है। बाबा ने कहा बच्चे भाषा इसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकती, आपकी दृष्टि भाषा का काम करेगी, आपकी भावनाएं भाषा का काम करेंगी, इसलिए कभी भी नहीं सोचो मुझे भाषा नहीं आती, आपकी स्थिति भाषा बन जाएगी। दादियां गई हैं, उनको न भाषा आती है, न वहां की इंग्लिश आती है, न उनकी बातें समझती हैं, लेकिन मुस्कुरा करके स्नेह की दृष्टि दे करके उन आत्माओं को नजर से निहाल कर दिया। राइट हैंड वो हैं जो बाबा की हर आज्ञा को हां जी करके उनके सेवा में सदा मददगार बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। बहुत बड़ा विश्व कल्याण का कार्य है, केवल एक विधि से वो संपन्न नहीं होगा। केवल हम वाचा सेवा करते रहें, ये सेमिनार किया, ये अभियान निकाला, ये किया, बाबा कहते बच्चे इस विश्व कल्याण के लिए आप बच्चों को तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करनी है। बहुत शक्तिशाली, शुद्ध, पवित्र, शुभ भावनाओं से संपन्न आपकी मनसा चाहिए। मनसा इतनी शक्तिशाली है तो जो वाचा, जो हम ज्ञान देंगे, जो बात कहेंगे, उसका असर होगा, वो सहज मानेंगे। मन में कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। मनसा वाचा के साथ जो हमारे संबंध संपर्क में आए, उनको ऐसी अपनेपन की फीलिंग आए, ऐसा स्नेह मिल जाए जो ज्ञान को छोड़ ही न सके और समीप आ जाए। तो जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाओं को हम साथ साथ लेकर के चलते हैं तो सेवाओं में सफलता प्राप्त होती है। और बाबा के राइट हैंड बच्चे तीनों प्रकार की सेवा में मनसा वाचा कर्मणा तन मन और धन, हर प्रकार से सेवा में जो मददगार बनते हैं वही बाबा के राइट हैंड कहलाते हैं। तो आप सब कौन हो, हैं पक्के? अगर राइट हैंड है तो राइट हैंड को कभी सुस्ती अलबेलापन आ ही नहीं सकता, वो सदा आगे हैं। कोई भी बड़े से बड़ा काम होता है, राइट हैंड मजबूत हैंड है, उसी से करते हैं। तो ऐसे मजबूत हैंड बन के बाबा के जाना। और पांचवा सम्मान है, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, शिव शक्ति हूं, पांडव कहेंगे मेरे साथ, पांडव पति कंबाइंड है। वास्तव में हम सब शिव शक्ति हैं, आत्मा तो शक्ति है, वो मेल और फीमेल की बात वहां नहीं है, हम सब शिव शक्ति हैं। शिव बाबा की शक्तियां हमारे साथ साथ हैं। अगर ऐसे सम्मान लेकर के कोई आत्मा पुरुषार्थ करती है, नए नए ढंग से रोज नवीनता संपन्न पुरुषार्थ करती है, तो कभी भी उसका उमंग उत्साह कम नहीं होता। और हमारी दादियां जो इतने उमंग उत्साह में रही हैं, उनका कारण था वो कभी भी सम्मान को छोड़ करके नीचे नहीं आई, बहुत ऊंचा सम्मान था। और उनको एक सम्मान सदा रहता था, मुझे किसने निमित्त बनाया है, मेरे पीछे कौन है, मेरा बैकबोन कौन है। सदा उनकी बुद्धि में पीछे बैकग्राउंड में बाबा दिखाई दिया, वही करा रहा है, उसका कार्य है, उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है। कोई भी विघ्न आया, कोई भी परिस्थिति आई, कभी भी नहीं कहा अब क्या होगा, बाबा बैठा है, मैं क्यों चिंता करूं, उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है, वो रक्षक है, वो संभालेगा। इतनी निश्चिंत स्थिति, अगर जरा भी चिंता होगी तो उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा। इस जीवन में कभी भी कोई भी प्रकार की चिंता सिर पर नहीं लेना। और चिंता का मूल कारण है, एक शब्द बताओ कौन सा, मेरापन, मेरी जवाबदारी, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरी टोकरी, सब हम सब ने अपने सिर पर कई प्रकार के बोझ उठा के रखे हैं। और संगम पर भाग्यवान आत्माएं वो हैं जिन्होंने कहा बाबा ये सब तेरा है, ये सब तेरा है, ये सब तेरा, समर्पित करो, इस भट्टी के अंदर कोई भी बोझ लेके नहीं जाना, ऐसे हल्के हो जाओ बाबा, तो जो कहेगा जैसे कहेगा हम हाजिर हैं, तू करण करावन हार है, मैं क्यों चिंता करूं। मैं तो एक समान सदा स्मृति में रखता हूं कि बाबा तो सोचने का काम भी अब आप करना, मैं नहीं सोचता, हमारे लिए वो सोचे ना, हम क्यों सोचे। कभी भी ये नहीं सोचता हूं ये क्या होगा, ऐसे कर, कोई कहता आप अकेले जा रहे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इसे हैं, अरे करण कराओ अनहार, बाबा करा रहा है, मैं अकेला कहां हूं, कोई को दिखाई नहीं देता, वो हमारे साथ रहता है, बिना टिकट के साथ चलता है, कोई रिजर्वेशन उसकी कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चे दिल का प्यार, सच्चाई बाबा को बहुत प्रिय है। दो शब्द बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं, एक एक शब्द अच्छा लगता है और दूसरा सदा शब्द अच्छा लगता है। एक एक समझते हैं ना, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई, एक नौमी, इकोनॉमी, एकाग्रता, एकांत, एकांत प्रिय। जिन बच्चों ने एक शब्द को पक्का कर लिया है, उनका उमंग उत्साह कभी कम नहीं होता। ऐसी एक वृत्ता स्थिति, मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाबा के आगे इतना समर्पित हो जाओ कि सब कुछ बाबा है। कई बार हम लोगों के बुद्धि में कोई कोई की ये बात आती है, बाबा तो निराकार है, बाबा तो मूल वतन निवासी है, और अभी ब्रह्मा बाबा भी तो अभी आना ही बंद कर दिया, अव्यक्त वतन में बैठ गया जाके। साकार में कोई तो चाहिए, और अगर कोई ने बाबा को अपने इस संकल्प से दूर कर दिया तो सदा के लिए वो दूर हो जाएगा। आप सब ध्यान देना, जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, बाबा अपने बच्चों की पालना के लिए बंधा हुआ है, भले अव्यक्त रूप में ना आए, लेकिन उसके बच्चे हैं। और बच्चे एक नहीं है, वृद्धि कितनी विस्तार से हो रही है। आप देखो, हम लोग सोचते थे लॉकडाउन में कैसे हवा होगी, सबको बाबा ने कहा तुम सेवा नहीं करो, बैठ जाओ। और जितने स्टूडेंट लॉकडाउन में बने हैं, शायद प्रदर्शनी मेलों से इतने नहीं बने। एक दिन मैं एक जगह क्लास करा रहा था, विदेश में ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो मेरे को वहां की बहनें कहती हैं कि भाई साहब, आज आपके लाइन ऑनलाइन क्लास के अंदर 90 लोग नए जुड़े हुए हैं, जिनको न यज्ञ के बारे में पता है, न बाबा के बारे में पता है, मुरली सुन रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, रेगुलर बन गए हैं, लेकिन नए नए बच्चे हैं। इतनी फास्ट गति से बाबा ने सेवाएं कराई, साइंस के साधनों से सेवाएं कराई। करण करावन हार बाबा है। कोई इंसान को ये आ जाए मैं करता हूं, मैंने किया है, तो ये उसका अभिमान है। स्वमान में रहने वाली आत्मा को कभी अभिमान नहीं आता। इसलिए ध्यान देना, जहां पर भी बोझ और बंधन महसूस हो, बाबा ये सब तेरा है, ट्रस्टी बन जाओ, निमित्त हूं। दादियों ने कभी अपने ऊपर सिर पर बोझ नहीं लिया। कभी कभी बड़ी दादी से अखबार वाले पूछ देते थे, दादी आज संसार में अगर किसी को दो कुमारियां होती हैं, उनको कितनी चिंता हो जाती है, पढ़ाना लिखाना, बड़ी हुई हैं, शादी करना, ये करना, कहीं नाम बराबर खराब ना हो जाए, और आपके पास इतनी हजारों कन्याएं हैं, आपको टेंशन नहीं होता, आपको चिंता नहीं होती, जवाबदार हैं आप, प्रशासिका हैं, मुख्य प्रशासिका हैं। तो दादी कहती, मेरे नहीं हैं ये सब, बाबा के हैं, उनके सब बच्चे हैं, वो जवाबदार है, मैं तो निमित्त हूं, मैं क्यों चिंता करूं, वो बैठा है पीछे। इतनी हल्की, इतनी निमित्त भाव में यहां तक कह देती थी कि अगर मैं कहूं बाबा गुड नाइट, तकिया पर मैं सिर रखती हूं, मुझे नींद आ जाती, ऐसे नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, कभी कोई चिंतन व्यर्थ नहीं चलता, कभी मुझे यज्ञ की चिंता नहीं होती, बाबा बैठा है, उसका बच्चे, उसका कार्य, उसके बच्चे हैं। आज हमारी दादियों ने इतना निमित्त और निर्माण बन करके यज्ञ का इतना विस्तार कर दिया, इतनी सेवाओं की सफलता हो गई, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा ये मेरा काम है, बाबा का है। हाँ, करने के लिए बाबा की टचिंग आई और करने लगी। आपको पता हो, मैंने 51 ईयर से देखा है, शायद 51 बिल्डिंग बनी है, हर साल नया नया प्रोजेक्ट, नई बात। जब पांडव भवन में मैं आया हूं, वो छोटा हिस्ट्री हॉल बन गया था, और अगर 100 लोग आते थे तो हम दादी को कहते, दादी बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बहुत बच्चे आ गए, कहां सोएंगे। अरे तुम लोग अपना कमरा खाली कर दो, तुम बाहर ब्रांडों में सो जाओ, अगर नहीं सोना है बरामदे में तो दरी लगाओ, सब उसी में एक में सो जाओ। 100 लोगों के रहने की व्यवस्था इस पांडव भवन में नहीं थी। आज 20,000-25,000 लोग शांतिवन और सब जगह आके रह जाते। कितनी व्यवस्थाएं करनी होंगी, कितना बाबा ने किया होगा। ब्रह्मा बाबा कहता था, अरे बच्चे तुम, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, कोई आपको फिक्र नहीं है। ब्रह्मा बाबा पर तो कितनी फिक्र आते हैं, कभी कभी हंसी में कहता, जिसके मामले जिसके मत्थे मामला, उसको नींद कहां से आई। लेकिन इतना सब बच्चों को आथत देते हुए, इतना सब करते हुए भी कभी बोझ नहीं लिया, बाबा जानता है, बाबा के बच्चे हैं। और जब कर्मातीत बना, ऐसे हाथ में हाथ दे करके, ना यज्ञ याद आया, न बच्चे याद आए, न सेवाएं याद आई, एक सेकंड में पंछी उड़ गया। कैसे न्यारे और प्यारे रहने का पुरुषार्थ किया होगा बाबा ने। हम सभी भी माता पिता को फॉलो कर रहे हैं, अपने बड़ों को फॉलो कर रहे हैं, क्यों कोई प्रकार का बोझ लेकर के बैठे हो? समर्पित करो, भले प्रवृत्ति है, लेकिन बाबा ने हमें प्रवृत्ति जरूर दी है, लेकिन कहा है बच्चे परवृत्ति, वृत्ति से परे रहो। मेरी प्रवृत्ति है, मेरा परिवार है, मेरी जवाबदारी है, यही बोझ है, यही बंधन है, और जहां बोझ और बंधन है वहां उमंग उत्साह नहीं रहेगा। इसलिए अपने उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ, सब बाबा को अर्पित करो। जहां मेरापन है वो सब तेरा है, और हर कार्य में अगर उमंग उत्साह में रहना है तो सकारात्मक पॉजिटिव सोचने की आदत डाल लो। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा, आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा होगा, और जो और आगे होने वाला वो और अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि बाबा मेरे साथ है ना सर? क्या होगा, कैसे होगा? बाबा कहता कोई भी प्रश्नों की हलचल न हो, तब कहेंगे भगवान को इन्होंने पाया है, नहीं तो ऊपर ऊपर से गीत बजा लो, भगवान हमारा साथी है, भगवान हमें मिल गया। अगर भगवान मिल गया तो उसके चिन्ह भी तो दिखाई देने चाहिए। क्यों किसी बात की चिंता है, क्यों फिक्रात है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सरकार ये कर रही, फलाना वो कर रहा है, प्रकृति ऐसे कर रही। अरे बाबा कहता है तो अंत समय है, सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। इन सब को साक्षी होकर के देखने का अभ्यास करो। शरीर के हिसाब किताब हरेक के आगे आ रहे हैं, प्रकृति के हिसाब आ रहे हैं, आर्थिक रूप में धन के हिसाब किताब आ रहे हैं, जो बहुत संबंध में बहुत स्नेही थे वो भी विरोधी बन रहे हैं, दोस्त भी दुश्मन बन रहे हैं, भले बन जाए। हमें सत्य मार्ग मिला है, सत्य मार्ग से हमें हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। बाबा ने हमें सच रास्ता दिखाया। जो निश्चय बुद्धि है वही निश्चिंत स्थिति में रहते हैं, और उनका उमंग उत्साह कायम रहता है, और जहां निश्चय हिला वहां उमंग खत्म हो जाता, उत्साह खत्म हो जाता। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, बहुत निश्चय चाहिए, स्वयं में निश्चय, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, कैसी भी माया विकराल रूप लेकर के आ जाए, कितने भी बड़े रूप में कोई परिस्थिति आ जाए, मैंने पार की थी, पार करूंगा, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प मैंने पार की है। अगर इस निश्चय के आधार से चलोगे निश्चिंत रहोगे, और उमंग उत्साह और बढ़ता रहेगा, अरे भगवान हमारे साथ है, क्या बड़ी बात है। ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा है, जो बहुत सकारात्मक सोचते हैं, कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता, दिखाई दे भले कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बाबा कहता अच्छा चलो कुछ भी हो गया, उसमें भी कुछ सीखा। एक बार एक मकान को कोई ने आग लगा दी, आग लग गई, बाबा के पास बात आई, बाबा ने बहुत अच्छा हुआ, मुस्करा दिया। और ही सोचने वाले सोचते हैं अरे भगवान का घर, भगवान का सेंटर ऐसा हो गया। बाबा तो जाने जाना नहार है, वो जानता है इसमें भी कल्याण है, इसके बाद और कुछ अच्छा होने वाला होगा, दुनिया को ही आग लगने वाली है, ये क्या बड़ी बात है। इसलिए कुछ भी नीचे ऊपर हो, स्थिति को हिलने नहीं देना, अचल अडोल एक रस, जमा दो पांव, कुछ भी हो जाए, रावण भी आ जाएगा ना तो भी पांव को हिला नहीं सकता। बड़ी अच्छी कहानी है अंगद की, मैं तो अंगद की कहानी जब सुनता पढ़ता हूं, क्या भक्तों ने बनाई है उसकी कहानी। अब जब उसको रावण की दरबार में सम्मान नहीं मिलता है, तो उसने सम्मान के लिए अपनी पूंछ का ही आसन बना दिया, निकालता गया, और जब उसके सिंहासन से उसका आसन ऊंचा हुआ तो उस पर बैठ के डायलॉग करता है। किसके लिए है ये? हमारे सबके लिए है कि रावण के दरबार में कोई मान देगा, कोई अपमान करेगा, कहीं मिलेगी कोई बात, कहीं नहीं। हमारे को बाबा ने इतने सम्मान दिए हैं, अभिमान वाली पूछ नहीं हमारे पास, सम्मान वाली पूछ है। हम किसके दरबार में, किसके बच्चे हैं? किसके दूत हैं उसको नसा था, और फिर चैलेंज क्या किया कि तुम अगर कोई पांव हिला करके तुम्हारे सेना वाले दिखा दें तो सीता तुम्हारी हो जाएगी। अब सीता पर तो उसका अधिकार था नहीं, सीता तो राम की है, लेकिन चैलेंज वो किस आधार से कर रहा है? वो जानता है कि राम की सीता को कोई हाथ लगा ही नहीं सकता है, वो निश्चय कितना पक्का है, इसलिए मेरे पांव को कौन हिलाएगा। कहते जब सब आए हिलाने लगे, हिलाते हिलाते एक ने नहीं हिला पाया तो रावण को गुस्सा आया कि मैं हिला के दिखाऊं। तो जब रावण उठा गुस्से में तो उसने अपना पांव पीछे कर लिया और कहा तुम मेरे पांव के आगे क्यों झुकता है, तुम राम के आगे झुको। और जब उसका गुस्से में उसका ताज गिरा तो कहते ताज उठाया और राम के दरबार में फेंक दिया। कितनी वंडरफुल कहानी, संगम के ब्राह्मणों की कहानी है। हम सब बाबा के बच्चे, रावण पर तो जीत भगवान ही पाएगा, लेकिन रावण की कोई भी सेनानी मुझ आत्मा को परास्त न कर सके। सब ऐसे अंगत बन करके रहो, अपने ऊंचे सम्मान में रहो, क्या कोई बड़ी बात है। जो बातों को बड़ा बनाते हैं ना, वो कभी उमंग उत्साह में नहीं रह सकते। बातें हर एक के आगे आती, कोई बात को पहाड़ बना देते सोच सोच करके, और कोई पहाड़ जैसी बात को भी कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी कला है सोचने की। तो कभी भी कोई बातें आए, बड़े से बड़ी आ जाएं, नथिंग, छोटी कर दो उनको, छोटी को बड़ा नहीं बनाओ। छोटी सी बात आ गई, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे किया, मूड खराब, फीलिंग आ गई, रोना शुरू हो गया, खुद वो भी डिस्टर्ब, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपना समय अपनी शक्तियां नष्ट कर रहे हैं, कैसे उमंग उत्साह रहेगा। कभी भी फीलिंग की फ्लू ना आए, ये सब पाठधारी हैं, इनका हिसाब किताब है, हम इनके साथ आए हैं, कुछ तो होगा ये हिसाब, तब तो हम इकट्ठे हुए हैं। बहुत नॉलेजफुल स्थिति चाहिए। नॉलेजफुल स्थिति वाली आत्मा कभी हिलती डुलती नहीं है। क्यों, क्या मैं नहीं जाती, ऐसा होता मेरे साथ ही ऐसा होता। बाबा कहता तेरे साथ होता तूने कुछ किया होगा ना पिछले जन्म में, ऐसे थोड़ी हो रहा है। किस जन्म में क्या किया होगा, किसके साथ क्या पता है। 63 जन्म देह मान में रह करके अगर हमने कोई किसी का अपमान किया, किसी को गाली दिया, किसी का कुछ नुकसान पहुंचाया है और उसको चुकतू नहीं कर पाए, तो अंत समय बाबा कहता सबका हिसाब चुकतू होगा। जब सबका चुकतू हो रहा है तो मैं प्रश्नों में क्यों उलझूं, क्यों अपने उमंग को खत्म करूं, क्यों अपनी खुशी को गायब करूं। बहुत सूली जैसी बात को हल्का बना के, कांटा बना करके पार कर लो। प्रश्नों में उलझ गए तो पहाड़ हो जाएगा। तो कईयों की आदत होती है बातों को पहाड़ बना देना। और दादी जी की एक बात मुझे गुजरा दादी जी की याद आती थी, अभी थोड़े दिन पहले वो मुरली चली है। दादी कहती थी बातों में बड़ा कल है, बात आती है और पीछे चली जाती, लेकिन जो बात जिसके लिए आती है वो इतना अकलमंद है जो बात को पकड़ के बैठ जाता है। क्यों कहा, कैसे कहा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन वही संकल्प चलते रहते हैं, इसने मुझे ऐसे कह दिया, इसने मुझे इज्जत नहीं दिया, यहां ऐसे किया जाता है, कोई मेरे को समझता नहीं, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, और ऐसे सोच सोच करके वो रो रहा है। बात तो पूरी हो गई, जिसने कहा वो भूल भी गया, लेकिन जिसने पकड़ के बैठ गया वो अपने समय को अपनी शक्ति को व्यर्थ कर रहा है, कैसे उमंग उत्साह रहेगा। इसलिए कोई भी बातें आती हैं उसको उसी समय फुल स्टॉप लगा दो, आई है खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई हिसाब किताब होगा, चुक तो हो गया। लेकिन बहुत शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए उसको स्टॉप देने की। 1 सेकेंड में फुल स्टॉप तभी लगता है जब ब्रेक पावरफुल होती है, और ब्रेक में ज्ञान का इंजन आयल चाहिए इंजन में, ऐसे ब्रेक लगती नहीं है। और सूखी ब्रेक लेकर के कोई गाड़ी चलाता है क्या, कभी भी कोई ऊंचाई पर कोई कहीं भी जाना होता है तो पहले चेक करता है इसकी ब्रेक ठीक है। हम इतनी ऊंची मंजिल के राही हैं, मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं, संगम युग पर हम फरिश्ता और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, और अपनी ब्रेक को चेक ही नहीं करते। देखो संकल्पों को ब्रेक लगाने की जो ब्रेक है ड्रामा पक्का है, ड्रामा की बहुत सुंदर ढाल है, ब्रेक है, नथिंग न्यू, जो हो रहा है सब अच्छा है। ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता, बात आई है खत्म हो जाएगी सेकंड में ब्रेक लगे। तो सभी अपनी ब्रेक को खूब चेक करना, पावरफुल है, बहुत पेपर आएंगे, अभी तो बहुत कम आए, भट्टी करके जाते हो ना और आएंगे, अंत समय है, सब प्रकार के पेपर आएंगे, लेकिन उस पेपर को ऐसे पार करें जैसे कुछ नहीं है, बाबा मेरे साथ है, पार हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे सामने आया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कई सोचते हैं इस जन्म में तो मैंने कुछ किया ही नहीं गलत, फिर भी मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें आ गई। अरे इस जन्म में नहीं किया तो पिछले में किया होगा, कभी तो किया होगा, ऐसे थोड़ी आ गई। इसलिए कोई भी बात आए, कैसी भी बात आए, किसी भी प्रकार का हिसाब किताब आए, हमारा उमंग उत्साह कम ना हो उसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। गलती में भी गलती ना दिखाई दे, कोई मेरी ग्लानी कर रहा है फिर भी कहे कोई बात नहीं है, कोई हिसाब किताब मैंने की होगी तब कर रहा है। ब्रह्मा बाबा ने कैसी स्थिति बनाई होगी जो सामने सामने उनके संबंधियों ने बाबा को गाली दी, सामने सामने। अब जिनके घर में झगड़े हो रहे हैं, जिनकी बहू बेटियां भाग रही हैं, वो जरूर कहेंगे ना बाबा ने क्या किया, हमारे परिवार को तोड़ दिया। और बाबा मुस्कुरा रहा, बच्चे परवश हैं, इनको पता नहीं है कौन कह रहा है, ये किसके लिए भागे हैं, किसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, ये तो भगवान करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अनजान है इसलिए गाली दे रहे हैं। और यहां तक बाबा कहते थे बच्चे आज गाली देते हैं, कल गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। और आज क्या हो रहा है, जो उस समय गालियां दे रहे थे अभी फूल चढ़ा रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी स्थिति जैसे ब्रह्मा बाबा ने बनाई, हर परिस्थिति को हंसते हंसते खेलते खेलते पार कर लिया। इधर बेगरी पार्ट शुरू है, खाने के लिए नहीं है, और इधर बाबा अखबार में लिखा रहा लिखो बच्चे ओम मंडली रिसीज्ड इन द वर्ल्ड। क्या नशा होगा आप समझ सकते हो। लोग सोचते थे अरे यहां तो खाने के लिए नहीं, एक दवाई नहीं है, कपड़े नहीं है, 400 लोग बैठे हुए हैं और बाबा अपने मस्ती में है, वो जानता है भगवान की लीला चल रही है, इन बच्चों की अगर परीक्षा नहीं लेंगे तो ये कभी सेवा में निकलेंगे नहीं, इसलिए बाबा परीक्षा ले रहा है। ये परीक्षा है, परीक्षा सदा की थोड़ी होती, पार हो जाएंगे। इसलिए कोई भी परीक्षाएं आ जाएं, उन परीक्षाओं में हिलना नहीं, परीक्षा क्लास आगे बढ़ाने के लिए आई है, हमारा और क्लास आगे बढ़ जाएगा और अच्छी स्थिति बन जाएगी। इसलिए सब अपने उमंग उत्साह को कायम रखना और हर दिन उत्सव मनाना, ढोल बजने चाहिए, उत्सव में क्या होते हैं ढोल बजते हैं, तो हमारे दिल के अंदर खुशी के, नशे के, उमंग उत्साह के ढोल बजते रहें। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, वो नशा है, वो उमंग है, उत्साह है, ठीक है। तो ऐसे उत्सव मनाना, पूरा संगम युग उत्सव का युग है, और हमको तो बहुत थोड़ा समय मिला है, 86 साल पूरा हो गए, कोई ने 1 साल, कोई ने 2 साल, कोई ने 4 साल संगम के अभी बिताए हैं, अभी जो समय मिला है बचा हुआ वो सदा उत्सव में ही बीते, उत्साह में ही बीते, क्यों क्या कैसे कि उलझनों में न जाए उस पर बहुत ध्यान देना, समय संकल्प श्वास संपत्ति सब सफल हो जाए, लास्ट आते भी हम फर्स्ट जा सकते हैं, फास्ट जा सकते हैं, लेकिन कुछ भी व्यर्थ न जाए, इस पर अंडरलाइन करो, जो शक्ति बाबा आपने दी है सब आपके काम में सफल हो जाए, आप पीछे वालों से जो पहले आए हैं उनसे भी आगे चले जाओगे, लेकिन सब कुछ सफल हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए, ऐसा टेंशन रख करके बहुत अच्छे उमंग में रहो और नए नए ढंग से पुरुषार्थ करो, उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करो, रोज नया संकल्प लो, रोज नया सम्मान लो, देखो कितना अच्छी स्थिति बन जाए। ध्यान देना, समय हो रहा है, मैं एक बात और कहता हूं, संगम युग पर हर ब्राह्मण आत्मा को देने का संस्कार धारण करना है, लेने की नहीं, कोई से मांगना नहीं है, हमें बाबा आपने जो दिया है मुझे सबको देना है। जो दाता बन करके रहते हैं वो कभी भी खाली नहीं होते, भरपूर रहते हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियां, जो कुछ खजाने भगवान से हमें मिले हैं, वो सब सेवा में लगे और निस्वार्थ भाव से लगे, कामना रख करके नहीं। अगर वो सेवा में हम लगा रहे हैं, हम दाता बन करके रहते हैं, कभी भी उमंग उत्साह कम नहीं होगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। और ये अविनाशी खजाने जो हैं वो तो कभी कम पड़ने वाले नहीं। कोई अच्छी ज्ञान की एक बात किसी को सुना दो, आपकी और ज्ञान चिंतन चलने लगेगा। कोई गुणों का दान कर दो, आपके गुण बढ़ जाएंगे। शक्तियों का दान कर दो, शक्तियां बढ़ जाएंगी। और अगर धन से भी किसी को आप सहयोग देते हो, मदद करते हो, तो भी धन कम नहीं होता और दुआएं मिलती हैं और धन आ जाता है। कईयों का यह अनुभव है, धन दिए धन ना कुटे। बाबा आपने जो कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जो आपने दिया है वो दाता बन करके मैं सबको देता चलूं। देते चलो, देते चलो, बहुत दुआएं मिलेंगी और वो दुआएं आपके उमंग उत्साह को बढ़ा देंगे। ठीक है, ओम शांति। अभी हम सब आधा घंटे के लिए बाबा का शुक्रिया करें। भट्टी का लास्ट दिन है ना, करेंगे शुक्रिया। बहुत दिल से बाबा को शुक्रिया करो। सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, मस्तक के बीच चमकती हुई मणि को देखो। आत्मा रूपी इस चैतन्य हीरे पर उस ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान बाबा की बहुत पवित्र किरणें आ रही हैं। वही किरणें विश्व के चारों ओर सर्व गुणों के रूप में फैल रही है। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, एक चैतन्य मणि हूं, प्यार के सागर। परम प्यारे शिव परमात्मा को इस सभा में आह्वान करो, मीठे बाबा, अपने पवित्र संग का रंग लगाने के लिए, अपने समान सर्वशक्तियों से संपन्न बनाने के लिए आप हमारे पास इस अकाल तख्त पर आकर मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ। मैं आपके साथ कंबाइंड हो जाऊं, आपके समान परम पवित्र बन जाऊं, अनुभव करो मुझ सितारे के साथ वो परम ज्योति सर्वशक्तिवान परम पवित्र शिव बाबा कंबाइंड है। मैं आत्मा उनके समान लाइट और माइट से संपन्न हूं। इस कंबाइंड स्वरूप के अनुभव के साथ मैं आत्मा अपने अव्यक्त वतन की सैर करूं। चलो इस साकारी जगत से दूर सूर्य चांद तारागणों से भी दूर इस नील गगन से पार अपने लाइट के वतन में ये फरिश्तों की दुनिया फरिश्तों की नगरी जहां पर अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर विश्व परिवर्तन का महान कार्य कर रहे हैं। ये अव्यक्त वतन साकारी संगम युग का फरिश्तों का वतन है। मैं एक बहुत सुंदर चमकीली लाइट की ड्रेस में फरिश्तों की ड्रेस में बाप दादा के सन्मुख हूं। बाप दादा के मस्तक से निकलती हुई पवित्र शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को संपूर्ण बना रही हैं। मेरे सिर पर उनका वरदानी हाथ है। मैं संपन्न फरिश्ता हूं। अपने फरिश्ते स्वरूप से चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाओ। पूरे ग्लोब को सर्च लाइट दो। मनसा सेवा करो। हर आत्मा को मुक्ति का वरदान दो। सब दुखों से मुक्त हो जाए। मास्टर मुक्तिदाता बनकर मैं आत्मा सर्व को मुक्ति का वर्षा दिला रही हूं। मैं एक लाइट का फरिश्ता हूं। मेरी पवित्र किरणों से प्रकृति के पांचों तत्व परिवर्तन हो रहे हैं। पवित्रता के सागर की किरणें मुझ फरिश्ते के मस्तक से निकलते हुए इन पांचों तत्वों को पावन बना रहे हैं। फरिश्तों की दुनिया से भी दूर अब मैं आत्मा अपने निज वतन में उस सुनहरे लाल प्रकाश के बीच चमकते हुए उस परम ज्योति शिव परमात्मा के समीप अपने मूल स्वरूप में निराकारी रूप में स्थित एक लाइट माइट का चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा अपने परम धाम घर में असीम शांति प्यार और शक्ति का अनुभव कर रही हूं। उस घर के अनुभव में समा जाओ। लवलीन हो जाओ। सर्व अनुभवों से संपन्न सर्व शक्तियों से संपन्न मैं भरपूर आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए इस शरीर में अवतरित हुई हूँ। मैं महान आत्मा हूं। पूज्य आत्मा हूं।
सभी ने अच्छा किया। नुमा श्याम का योग पावरफुल हा? और अच्छा लगा उत्सव का युग, संगम युग, क्लैरिटी मिली बहुत। तो भाई जी खास अमूल्य समय निकालकर आपके बीच में आए, एक हाथ हिलाकर शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।